मुख्य बात है ऐसा करो कि व्रत करने का अंत ही हो जाए, अन्यथा मरने की श्रृंखला समाप्त न होगी। तो इसमें असाधन क्या है और साधन क्या है ये पूछ रहे हैं भाई। महाराज जी के सूत्र हैं, उन्होंने हम लोगों को सलाह दी कि क्रिया शक्ति तुम्हारे पास है और करने का दाग भी है, तो ऐसा मत करो कि जिस करने से करने की उत्पत्ति होती चली जाए, कर्म से कर्म उत्पन्न होता चला जाए, ऐसा मत करो। ऐसा करो कि जिससे करने का अंत हो जाए, ये उनका सूत्र है। अब इसमें बहुत सीधी सादी बात है, साधन क्या है। अगर क्रिया जनित सुख का भोग करते रहेंगे तो करने का राग नहीं मिटेगा, करने का राग नहीं मिटेगा तो शरीर की आवश्यकता समाप्त नहीं होगी, शरीर की आवश्यकता शेष रहेगी और प्राण शक्ति का नाश हो जाएगा तो मृत्यु होगी और राग लेकर मरने से पुनर्जन्म अनिवार्य है। मूल भूल क्या हो गई कि कार्य करने की क्षमता मिली है मनुष्य को विवेक के प्रकाश में, प्रेम के भाव से, साधन बुद्धि से ऐसा काम करो कि करने का राग समाप्त हो जाए। क्रिया जनित सुख का भोग असाधन है और राग निवृत्ति के लिए परोपकार साधन है। क्रिया जनित सुख का राग क्या कहलाता है वो भी देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठने की कोशिश करो तो बोलते बोलते मुंह थक गया है तो चुप होना अच्छा लगेगा, चलते चलते पांव थक गए हैं तो बैठ जाना अच्छा लगेगा, ठीक है। अब कोई मुझको सलाह दे दे कि तुम चुप ही रहो, बोलना मत, या आपको कह दिया जाए जब बैठ गए हैं तो बैठ ही रहिए, यहाँ से उठिए मत, तो क्या होगा कुछ देर के बाद ही घबराने लगेगा कि भाई ये बैठने का काम कब खत्म हो, कब यहाँ से उठे, कब ये पूरा हो। तो राग की ये पहचान है कि प्रवृत्ति में लगे बिना अपने से रहा नहीं जाता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे भीतर करने का राग था तो तुम्हें शरीरधारी बन करके जगत में आना पड़ा, सही बात है। परम कृपालु ने कृपा करके तुम्हें मानव जीवन दे दिया जिसमें राग निवृत्ति की सामर्थ्य है। राग निवृत्ति की सामर्थ्य तुम्हें है, विवेक का प्रकाश तुमको दिया गया है, हृदय में उदारता तुमको मिल गई है। तो सुख भोग की प्रवृत्ति में लगे रहोगे तो करने में से करने की उत्पत्ति होती रहेगी और राग की निवृत्ति की साधना में लग जाओगे तो करने का अंत हो जाएगा। तो परम कृपालु ने मानव जीवन दे दिया और मनुष्य हो करके हम लोग अपने भीतर ऐसा अनुभव करते हैं कि कुछ न कुछ करना अच्छा लगता है। तो अब साधन क्या करें, साधन के संबंध में महाराज जी ने दो चार बातें हम लोगों के सामने रखी। मैंने उन सब बातों को दोहरा दिया था, उन भाई को और सुनने का मन हो गया तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। ये भी कह दिया था मैंने कि सत्संगी हो करके विवेक के प्रकाश में देख करके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल डालो और यह निश्चय करो कि काम किया जाता है विश्राम के लिए और विश्राम होता है अपने लिए। काम किया जाता है सुंदर समाज के निर्माण के लिए और विश्राम लिया जाता है शांति मुक्ति भक्ति के लिए। ये दृष्टिकोण जब अपने सामने स्पष्ट हो जाए तब आदमी सही काम करेगा और सही प्रवृत्ति के अंत में सहज निवृत्ति मिलती है। सहज निवृत्ति की शांति में योग बोध और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तो करने का राग खत्म हो जाता है, शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, अमर जीवन से अभिन्न होकर परम प्रेम से अभिन्न होकर मनुष्य सदा सदा के लिए चित्त हो जाता है। तो पहला साधन क्या होगा, पहला उपाय क्या होगा कि हम लोग अपने संबंध में जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें, गलत दृष्टिकोण को छोड़ें, सही दृष्टिकोण को ग्रहण करें। गलत दृष्टिकोण क्या है, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा तो उस पर जीवन का निर्वाह होगा। ये दृष्टिकोण है कि नहीं है, ये है ना, ये गलत दृष्टिकोण है, ये असाधन है। कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, सही बात है, लेकिन जो मिलेगा उससे तुम्हारा जीवन है ये गलत बात है। जो मिलेगा वो शरीरों के अर्पित कर दिया जाएगा, उससे आगे वो नहीं जाएगा। काम किया जाता है करने के राग से मुक्त होने के लिए, श्रम किया जाता है सुंदर समाज के निर्माण के लिए, श्रम किया जाता है प्राप्त सामर्थ्य के सदुपयोग के लिए और इन सब का फल होता है विश्राम। स्वामी जी ने सूत्र रूप में कह दिया कि श्रम किया जाता है विश्राम के लिए और विश्राम होता है अपने लिए। अपने लिए का अर्थ क्या है कि जो अपने ही जीवन में फिर शांति का तत्व विद्यमान है वो विश्राम काल में अभिव्यक्त होता है। अपने ही में जो अलौकिक अविनाशी नित्य तत्व विद्यमान है विश्राम काल में वह अभिव्यक्त होता है। अपने ही में जो अपने परम प्रेमास्पद विद्यमान है उन परम प्रेमास्पद की प्रीत की जागृति होती है। तो अपने को शांति चाहिए, अपने को अमरत्व चाहिए, अपने को परम प्रेम चाहिए। सबसे पहला उपाय हम लोग क्या करेंगे कि अकेले अकेले बैठ करके अपने को खूब अच्छी तरह से समझा लो कि अपने को जो चाहिए वह किसी कर्म का फल नहीं है। ये बात पकड़ में आती है, अपने को जो चाहिए वो किसी कर्म का फल नहीं है। आप कहेंगे कि कैसे नहीं है, हम तो इतनी इतनी तीर्थ यात्रा करेंगे तो उसको फल मिलेगा। ठीक है, फल मिलेगा, लेकिन अगर फल की इच्छा रख करके करोगे तो अपने को जो चाहिए सो नहीं मिलेगा। कर्म का फल हमेशा ही नाशवान होता है। क्यों? कर्म का संपादन हमेशा ही नाशवान कारक अंगों की सहायता से होता है। इस बात को मानिएगा कि नहीं? ये स्थूल कर्म चाहे सूक्ष्म कर्म किसी भी प्रकार के कर्म का संपादन करो तो उसमें शरीरों की सहायता लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और शरीर नाशवान है कि अविनाशी है, तो नाशवान की सहायता लेकर जिन कर्मों का संपादन हुआ उन कर्मों का फल अविनाशी कैसे होगा? नहीं होगा। आपको चाहिए क्या? आपको अविनाशी जीवन चाहिए, ठीक है? अरे भाई, नाशवान को समेटने बटोरने के प्रयास में आंख की रोशनी चली गई, सुनने की ताकत खत्म हो गई, पीठ की रीढ़ की हड्डी झुक गई, कोई फायदा हुआ? जब से होश हुआ, जब से कुछ करने के लायक हुए, तब से कर रहे हैं कि बैठे हैं? कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। जिनमें आलस्य है वे थोड़ी और जड़ता में डूबे रहते हैं, और जिनमें फुर्ती है वे जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा काम करते रहते हैं। तो पूरी जवानी भर काम किया, अब प्रौढ़ अवस्था आ गई तब भी काम कर रहे हैं, अब वृद्धावस्था आ गई तब भी काम कर रहे हैं, शरीर नहीं चल रहा है तो भी उसको घसीट रहे हैं। इतना करके जो कुछ आपने प्राप्त किया उसके द्वारा जिंदगी की कमी पूरी हो गई कि कमी अभी शेष है? ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि पूरी शक्ति भर नई उम्र में जितना श्रम करके कमाया अब उसको संभाल कर रखने की चिंता लगी है। हिसाब याद नहीं रहता है तो खाता वही तो लड़कों के हाथ में देना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता लगती है। तो आवश्यकता पूरी हो गई कि असमर्थता बढ़ने का दुख बढ़ गया? जी दुख बढ़ गया। आप असमर्थ होकर एक किनारे बैठ गए, नई पीढ़ी ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया, फिर भी आपको चिंता से छुट्टी नहीं है। आप पूछना चाहते हैं कि उस बही का काम पूरा हुआ कि नहीं, उस दुकान का क्या हाल है, नई पीढ़ी के लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं? आप उनको पूछ पूछ के हैरान हैं, उनको उत्तर देने के लिए फुर्सत नहीं, तो कहते हैं कि बाबू जी बैठिए, राम राम जपिए, हम लोगों से पूछिए मत। ये दयनीय दशा देखने में आती है कि नहीं? इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो भी तुमको क्रिया शक्ति मिली है उस सारी शक्ति को ऐसे काम में मत लगा दो कि काम करते करते फिर काम करने की ही उत्पत्ति होती जाए। तो करने का राग रख करके काम करना असाधन है। करने के द्वारा सुख भोग की इच्छा लेकर काम करना असाधन है। करने के द्वारा नाशवान का संग्रह की इच्छा रखना असाधन है। ये सब छोड़ देना पड़ेगा। साधन क्या है? किए बिना न रहा जाए तो इस ध्येय को सामने रखकर काम करो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह सब विश्राम की प्राप्ति के लिए। तो श्रम किया जाता है विश्राम के लिए और विश्राम होता है अपने लिए। पहली बात वो अच्छी तरह से इस बात को जान लीजिए कि श्रम किया जाता है विश्राम पाने के लिए और विश्राम होता है योग बोध प्रेम के लिए। तो अपने को चाहिए योग बोध प्रेम, इससे यह प्रकट हुआ कि अपने को चाहिए विश्राम, और विश्राम में सहायक बनता है उचित श्रम। तो श्रम किया जाता है विश्राम के लिए। यह दृष्टिकोण लेकर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रास्ता मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? भौतिक दर्शन की दृष्टि से जगत की सेवा के लिए काम करो करने का लाभ मिल जाएगा, पर पीड़ा से पीड़ित होकर दुखी जनों की सहायता के लिए काम करो करने का लाभ मिल जाएगा। अध्यात्मवाद की दृष्टि से तीनों शरीरों से संबंध तोड़ने के लिए साधन बुद्धि से काम करो, सही प्रवृत्ति के बाद सहज निवृत्ति आ जाएगी। आस्तिक दर्शन की दृष्टि से प्यारे प्रभु की प्यारी प्यारी सृष्टि की सेवा के रूप में प्यारे की पूजा करो, पूजा के पवित्र भाव से करने का लाभ मिल जाएगा। ये साधन होगा तो मानव सेवा संघ की शैली में अति आधुनिक अति सामान्य भाषा में स्वामी महाराज ने प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शरीर में प्राण शक्ति के रहते रहते व्यक्ति के भीतर से शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाए तो ये जीवन मुक्ति है। स्वामी रामकृष्ण जी ने ऐसा अनुभव किया था। उन्होंने वेदांत दर्शन पर निबंध लिखे, बहुत से निबंध लिखे, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। तो शरीर के नाश से पहले आखिरी निबंध जब लिखा था उन्होंने, एकादशी की तिथि थी और कई दिनों से पहले से लिख रहे थे, लिखते लिखते 10-11 बजे के लगभग उनका लिखना खत्म हुआ। तो मैंने वो निबंध का संग्रह पढ़ा है, अंग्रेजी में उसका संग्रह है स्वामी रामतीर्थ जी का, उनके हाथ का सिग्नेचर है आखिरी निबंध के नीचे, लिख करके अपना अपना हस्ताक्षर किया और लिखना बंद करके कहने लगे, अब राम को शरीर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाहे जब चला जाए। तो उस वीर पुरुष ने संसार के वैभव को ठुकरा दिया और जीवन काल में थोड़े ही दिनों में वे कृतकृत्य हो गए। भीतर में उन्होंने तो अनुभव कर ही लिया कि वह एक ही नित्य तत्व है, उसी में मैं हूँ और वही मुझ में है, कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। बहुत सुंदर 8-10 स्कंधे का पद भी है स्वामी राम से पूजा बनाया हुआ, कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। इसका प्रत्यक्ष अनुभव का बोध था उनको और इसको वे लिख रहे थे। तो लिखने ही के लिए जैसे जैसे लेखक कलम उठाता है, उसी तरह से स्वामी जी को वेदांत प्रकाश के निबंध लिखने के लिए शरीर से संबंध रखने की जरूरत थी। और जिस दिन आखिरी निबंध खत्म हुआ उसके बाद और नहीं लिखा। आखिरी मैं इसलिए कहती हूँ कि उसके नीचे उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस अब काम हो गया, अब राम को शरीर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाहे जब चला जाए। तो शरीर के नाश से पहले मनुष्य यह अनुभव कर ले कि अब मुझे शरीर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसा अनुभव करना कहलाता है जीवन मुक्ति। ऐसा अनुभव कौन कर सकता है? ऐसा अनुभव वो कर सकता है जिसने अशरीरी जीवन के आनंद को अनुभव कर लिया, जिसने इंद्रियों को विषय विमुख करके, मन को निर्विकल्प करके, बुद्धि को सम करके, कारण शरीर की स्थिति की शांति को पार करके, तीनों शरीरों की असंगता में अपने आप में संतुष्ट होने का अनुभव जिसने किया, उसको पूरा पक्का पता चल जाता है कि मुझे अपने लिए शरीर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और शरीरी जीवन में इतना हल्कापन है, इतना आनंद है, इतनी स्वाधीनता है कि वहाँ समय और स्थान की सीमा नहीं, कारक अंगों की शक्तियों की सीमा नहीं, असीम विस्तार अपना ही मालूम होता है, ब्राह्य आनंद भरा रहता है, ब्राह्य आनंद भरा रहता है। तो जो जो साधक साधन काल में शरीरों से असंग होने का अनुभव कर लेते हैं, शरीरों से तादात्म्य तोड़ने का अनुभव कर लेते हैं, उनको और शरीरी अस्तित्व में अपने आप में बड़ी संतुष्टि मिलती है। सब प्रकार से वो शांति, वो संतुष्टि, वो आनंद इंद्रिय मन चित्त बुद्धि निरपेक्ष है, इनकी सहायता से नहीं है, इनकी संगति के छोड़ने से वह आनंद है। उस आनंद का अनुभव साधन काल में साधक जन करते हैं और एक बार जिनको ऐसा अनुभव हो जाता है वे अपने को जीवन मुक्त अनुभव करते हैं। उनको अपने लिए शरीर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रहती, तो प्राण शक्ति बची रहे और आवश्यकता पूरी हो जाए तो इसका नाम है जीवन मुक्ति। और शरीर बनाए रखने की कामना बनी रहे और प्राण शक्ति का ह्रास हो जाए तो उसका नाम है मृत्यु। अब आप लोगों ने, बहुत से भाई बहनों ने बड़ा शास्त्रीय विवेचन सुना होगा, समाधि के भी कितने भेद विभेद होते हैं, जीवन मुक्ति की भी बड़ी परिभाषाएं, बड़े लक्षण बताए गए होंगे, तो उन सबको आप मिलाकर के देखिएगा, इस सूत्र के भीतर सब समा जाएगा। तो कामना रह गई और शरीर नाश हो गया, इसी का नाम मृत्यु है। और जिन संत जनों के जीवन में शरीरों की असंगता का बोध हो जाता है और शरीरी अस्तित्व में संतुष्ट रहने का आनंद आ जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि शरीर कब गया, उससे उनका कोई मतलब ही नहीं रहता, उनकी मृत्यु होती ही नहीं है, उसका नाम है जीवन मुक्ति। और स्वामी जी महाराज ने एक बार ऐसा किया था, मैंने कई बार सुनाया है सत्संगी भाई बहनों में, पेट में बहुत अधिक एसिड हो गया तो हेमरेज हो गया, पेट के भीतर रक्तपात हो गया, कोई नक्का फट गई, शरीर की हालत जब खराब हो गई थी, अब शरीर क्या कब गया, ऐसा हो गया। जल्दी जल्दी डॉक्टर सब बुलाए गए, उन्होंने आकर के कहा कि घर में तो नहीं समझेगा, तो जाकर के वहां से एम्बुलेंस भेजते हैं, अस्पताल ले आए। तो धूमधाम मच गई, मानव प्रदर्शन का सम्मेलन चल रहा था, डॉक्टरानी की बैठक हो रही थी, बहुत लोग बाहर से आए हुए थे, बड़ा समारोह चल रहा था। तो चारों ओर हलचल मच गई, स्वामी जी महाराज ने मुझको बुलाया और उनके एक मित्र संत है नाथ जी महाराज, उनको बुलाया, एक और नाथ जी को बैठाया, एक और हमको बैठाया, और कहने लगे एम्बुलेंस हमको लाओ, हम सुन रहे हैं, अस्पताल मत ले जाओ, हलचल बंद करो, चिकित्सा के लिए परेशान मत हो, मुझे उस जीवन में रहने दो जहाँ रहने पर शरीर के रहने न रहने का पता नहीं चलता। ये कहा, हम लोग चुप हो गए, बाहर निकल करके सब लोगों को मैंने सुना दिया, कहा कि ये संदेश है महाराज का, क्या करना चाहिए, हमने कहा जो करते हैं तो करना चाहिए, अब सोचने की तो कोई बात ही नहीं, तो एम्बुलेंस मत मंगाओ, अस्पताल मत ले जाओ, खर्चा बंद करो, चिकित्सा की परेशानी मत करो, मुझे उस जीवन में रहने दो जिसमें रहने पर शरीर के रहने न रहने का पता नहीं चलता। कौन सा जीवन होगा, अवश्य ही देहातीत जीवन होगा, तो शरीरों से अपने को उन्होंने असंग कर दिया और किस आनंद में रहे ये तो वही जाने। हम लोगों ने देखा लगभग 24 घंटे तक, उससे भी ज्यादा देर तक, बिल्कुल मिट्टी के ढीले की तरह बिस्तर पर एक ही तरफ से शरीर चुपचाप शांत पड़ा रहा। तो स्वामी महाराज अपने आनंद में रहे, तो उनको ये पसंद नहीं आया कि हाय शरीर हमारे साथ किया जाए। उन्होंने सब बंद करवा दिया और कहा कि हम बंद करो, तुम लोग चुपचाप रहो, शांत रहो, मुझको उस जीवन में रहने दो जहाँ रहने पर शरीर का भार नहीं होता। शुभानंद में अपने रहे, शुभानंद में रहे और अभी भी उच्च कोटि के संतों हैं जो कि उनके आनंद को जान सकते हैं, उनके अस्तित्व को देख सकते हैं। ये लोग देखते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि महाराज जी खूब आनंद में हैं और कर देते हैं कि देखो मैं कितना आनंद में हूँ। जिस शरीर में इतने प्रकार के रोग समा गए थे उसी शरीर में तुम लोग उनको रखने जाते थे, देखो मैं अब कितने आनंद में हूँ। तो यह सच्ची बात है और मैं कहती हूँ कि भगवान ने, जीवन दाता ने, जन्म दाता ने मानव जीवन दिया है तो इस जीवन का, इस जन्म का अर्थ ही है कि जीवन मुक्ति प्राप्त करो। खा पी करके बाल बच्चे पैदा करने का सुख भोगने के लिए तो कितना है, 84 लाख, 84 लाख योनियां है ही है, 84 लाख में से एक कम कर दू, नहीं नहीं तो हम लोग तो कितना हो जाएगा, 83,99,999 योनियां तो सुख दुख भोगने के लिए सही है। बस आप ही तो है जिनको इस बात में समर्थ बनाया गया है कि साधन धाम मोक्ष दल द्वारा ऐसा जीवन पा करके आप जल्दी से जल्दी जीवन मुक्त हो जाए, भगवत भक्त हो जाए। ऐसा होता है, अनहोनी बात नहीं। स्वामी जी महाराज की महिमा तो मैं क्या बताऊं। एक गृहस्थ का जीवन मैंने देखा, बड़े ऊंचे घराने में पैदा हुए, बड़ा ही उज्जवल चरित्र रहा उनका परिवार में, समाज में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में राय बहादुर का खिताब मिला उनको, बड़े आदमी थे। महाराज जी के पास संत मिलन जब हुआ उनका, वे सब प्रकार से संत के समर्पित हुए, स्वामी जी की गोदी में सिर रख गए और अधीन होते कहे महाराज जी मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझको तो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, स्वामी जी मेरी ये बहुएं तो माँ के समान मेरी सेवा करती हैं, स्वामी जी हाय मेरा उद्धार कैसे होगा। उन सज्जन को भगवत शरणागति की साधना से, संत की वाणी में विश्वास करने से जीवन मुक्ति का अनुभव हो गया। अब मैं जीवन मुक्त हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरा जन्म नहीं होगा, मुझको संत ने आश्वासन दिया था, मुझको स्वामी जी महाराज ने कहा था, उस समय मुझको विश्वास नहीं होता था, अब मुझे अनुभव हो गया, मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, मुझमें आनंद ही आनंद भरा है, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। कह करके उन्होंने सबको घर में से निकाल दिया, विदा कर दिया और आनंद में चले गए। तो जीवन मुक्ति असंभव बात नहीं है और जीवन मुक्ति किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जीवन मुक्ति के अधिकारी सभी साधक हैं। तो जो साधक बनेगा, अपने को साधक स्वीकार करेगा, तो साधक की स्वीकृति अनिवार्य है। फिर वो साधक सबल है कि निर्बल है, इस बात का विचार जीवनदाता नहीं रखते। अब एकदम से अपनी आंखों पर पर्दा ही डाल लो, विवेक के प्रकाश का आदर ही करना इनकार कर दो, विचार की शक्ति को बिल्कुल ही कुंठित करके रख दो, पशु की भांति भोग बुद्धि से ही जीना पसंद करो, तब तो मानव की संज्ञा ही खो गई, तब तो हम मनुष्य रहे ही नहीं। लेकिन मनुष्य हो और भीतर थोड़ी सी भी सजगता है कि यह जीवन मिला है जीवन मुक्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए, थोड़ी सी भी चेतना है तो अपने को सत्संगी बनाओ, अपने को साधक स्वीकार करो, तो अल्प सामर्थ्य होगी तब भी और विशेष सामर्थ्य होगी तब भी जीवन मुक्ति भगवत भक्ति मिलेगी जरूर। आखिरी बात उन्होंने लिखा, प्रभु चिंतन होवे, बहुत सही शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, करने के लिए लिख रहे हैं परोपकार और प्रभु चिंतन के लिए लिख रहे हैं होवे। तो प्रभु चिंतन, भगवत चिंतन, सत्चिंतन, ये शब्द आपने सुने होंगे, सभी प्रकार की प्रणाली इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैं अनुसंधान की प्रणाली से परिचित हूँ, स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके अपनी पृष्ठभूमि में, आधुनिक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में समझने की चेष्टा मैंने की है, तो उसमें क्या रहस्य है। तो रहस्य ये है कि कुछ लोगों को आपने ऐसे कहते सुना होगा कि भगवत चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, चिंतन करो, ऐसा सुना होगा। उनका विश्वास है कि शुभ चिंतन करने से अशुभ चिंतन का नाश होता है। मेरा अपना जो समझा हुआ है वो ये है कि चिंतन से चिंतन का नाश नहीं होता है। स्वामी जी महाराज का जो अनुभव किया हुआ है वो क्या है, करने वाला चिंतन अखंड नहीं होगा। इसलिए जो चिंतन तुमको अभिष्ट है उसको होने दो। समझ में आता है, जो चिंतन आप करेंगे तो करने का आरंभ करेंगे तो करने का अंत भी होगा, ठीक है। तो किया हुआ चिंतन जो है वो अखंड नहीं हो सकता। और आपकी मान क्या है, भगवत स्मृति निरंतर बनी रहे, ठीक। तो आप चार चीज ये है कि निरंतर बनी रहे और कहते हैं कि चिंतन करो, तो करने वाला चिंतन निरंतर नहीं बना रहेगा, आरंभ करोगे तो उसका अंत भी होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया चिंतन करो मत, चिंतन को होने दो। अब होने वाला चिंतन भी आपके पास है नहीं है, होने वाला चिंतन आपके पास है। किसका चिंतन हो रहा है भाई, परिवार का, धर्म का, शरीर का, सामान का, संपत्ति का, पद का, इनका चिंतन हो रहा है। तो होने वाले चिंतन से आप अपरिचित नहीं है, अपरिचित है नहीं, होने वाले चिंतन से आप अपरिचित नहीं, सब समय हो रहा है, बैठे बैठे हो रहा है, बैठे बैठे हो रहा है, चलते चलते हो रहा है, खाते पीते हो रहा है। किसका चिंतन हो रहा है, नाशवान का चिंतन हो रहा है। किसका चिंतन हो रहा है? जिसमें आसक्ति हो गई है उसका चिंतन हो रहा है। किसका चिंतन हो रहा है? जिसके मिट जाने का भय है उसका चिंतन हो रहा है। किसका चिंतन हो रहा है? जिसकी प्राप्ति का लालच है उसका चिंतन हो रहा है। साधक जन क्या चाहते हैं? साधक जन की मांग ये है कि नाशवान का चिंतन मेरे भीतर से निकल जाए। तो कैसे निकलेगा भाई? तो जो सदा के लिए रहने वाला नहीं है उसकी महिमा स्वीकार कर दो। जो नाशवान है उसको जीवन का सहारा मत बनाओ। जिसने आज तक संतोष दिया नहीं उसकी कामना उसकी ममता छोड़ दो। तो जिस चिंतन को आप नापसंद कर रहे हैं वो चिंतन खत्म हो जाएगा। और चाहते हैं सच्चिंतन, चाहते हैं भगवत चिंतन। तो जिन जिन कारणों से इस समय हम लोगों के मस्तिष्क में संसार का चिंतन चल रहा है वही वही उपाय भगवान के प्रति कर लेना होगा। तो जिस कुटुंब को आपने अपना माना उसका चिंतन हो रहा है, अब आप चाहते हैं कि उसका चिंतन न हो तो उसके उसको अपना मानना छोड़ दीजिए। जिस परमात्मा के चिंतन को आप चाहते हैं कि होने लगे उस परमात्मा को अपना करके स्वीकार कीजिए। कैसे अपना करें? दिखाई तो देता ही नहीं है। तो बड़ी बढ़िया पहेली है, बड़ा जबरदस्त ठोस सत्य है। राजा ने उन्होंने क्यों ऐसे किया लेकिन कर रखा है। क्या कर रखा है? कि जो देखने में आया, जो सुनने में आया, जो समझने में आया वो पकड़ में नहीं आया। ठीक ठीक है। शरीर में युवावस्था देखने में आती है कि नहीं? ठीक आती है। पकड़ में रहती है क्या? पसंद आती है कि नहीं? जी ठहराने से ठहरती है क्या? ठीक है। तो ऐसी चीज जो देखने में आए लेकिन रुके नहीं, तो संत जन कहते हैं कि उसको उसका सहारा छोड़ दो, उसको अपना मानना छोड़ दो। तो क्या करें उसका? जल्दी जल्दी उसका सदुपयोग कर लेना। युवावस्था में शरीर में खूब बल रहता है, तो जब तक वो खत्म न हो जाए, काल की अग्नि में वो जल न जाए, काल के व्यवधान से वह मिट न जाए, उसी मौके के बीच में, उसी युवावस्था के बीच में बहती गंगा में हाथ धो लो। स्वामी महाराज कहते भाई वो अवस्था तो निकलती ही जा रही है, ठहराने से ठहरेगी नहीं, रोकने से रुकेगी नहीं। तो जब तक वो है तुम्हारे पास तब तक जल्दी जल्दी युवावस्था की सामर्थ्य को लेकर असमर्थों की सेवा के द्वारा चित्त की शुद्धि कर लो। शुद्धि जो होगी वो आपके संग शरीर के नाश के बाद भी रह जाएगी। तब क्या होगा? जिस तरह से मैंने धन को अपना माना तो धन का चिंतन होने लगा, पद को अपना माना तो पद का चिंतन होने लगा, उसी तरह से बिना देखे बिना जाने परमात्मा को अपना मानेंगे तो चिंतन होने लगेगा। जो चिंतन होने लगता है वो अखंड रहता है, मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता। और चिंतन होने लग जाए इसका उपाय क्या है? जिसके चिंतन को निरंतर बनाए रखना चाहते हो उसको अपना मानो। जो देखा हुआ मेरे सामने आया वो मेरी पकड़ में नहीं आया, इसलिए परमात्मा को देखेंगे तब मानेंगे, ऐसा मत सोचो। मानोगे तो देखने में आ जाएगा, और नाशवान आंखों से नहीं दिव्य दृष्टि से। तो दिव्य दृष्टि खुलेगी तो वो सदैव अपने लिए, अपने पास ही, अपने अनुभव में आता रहेगा, प्रेम का आदान प्रदान होता रहेगा। कभी मिटेगा ही नहीं, कभी छूटेगा ही नहीं, कभी हटेगा ही नहीं। तो वो दर्शन भी दिव्य है, और देखने के लिए जो वो दृष्टि मिलती है वो दृष्टि भी दिव्य है, और दोनों के बीच के प्रेम का आदान प्रदान भी दिव्य है। इसका कभी नाश ही नहीं होता है, न पूर्ति होती है न क्षति होती है, इतना और रस रहता है। तो आप चाहते हैं कि भगवत चिंतन होने लग जाए, तो होने लगेगा कब? जब अपना मानेंगे तब, जब उसको, जब उससे आत्मीय संबंध करवानेंगे तब, जब उन पर अपने को समर्पित करेंगे तब, जब उनके आश्रित होकर रहना पसंद करेंगे तब, जब उनके प्रेम को ही जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तब होने लगेगा। होने लगेगा तब तो सब काम पूरा हो गया, फिर उसके बाद और कुछ करने शेष नहीं रहता। वह स्मृति, वह चिंतन अपने आप में इतनी मधुर होती है, स्मृति इतनी सजीव होती है कि मैं तो सभी प्रयासों का और सभी साधनाओं का पूर्ण होना मानती हूँ। अगर भीतर में वो स्मृति जागृत हो जाए तो फिर उसके बाद तो साधक को कुछ करना ही नहीं रहता। वो इतनी जोरदार होती है कि संपूर्ण व्यक्तित्व उस स्मृति में ही समा जाता है। भगवत चिंतन, भगवत स्मृति के अतिरिक्त उस साधक में और कुछ शेष रह ही नहीं जाता।